ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज की इस प्रार्थना में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय से 26वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सब लोग मेरे बात दोहराइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम् भक्ति उपरुतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम् भक्ति उपरुता अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे एक पत्ता, एक फूल और फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, नित्य सुख के लिए, स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो कृष्ण भावना भावित होकर मन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से भी निर्धन व्यक्ति योग्यता का विचार किए बिना इसे प्राप्त कर सकता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वो भगवान का भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता ही कि वो क्या है और कहाँ पर बैठा हुआ है। ये विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ता, थोड़ा सा जल और फल भी भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान उसे खुशी से स्वीकार करते हैं। इसलिए किसी को भी भगवान से, भगवान की भक्ति से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वह बहुत सरल और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि को अपनाकर भगवान भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो ये जो श्लोक है ये बड़ा आसान है, मतलब भगवान की भक्ति कितने आसान हो सकती है इसका प्रमाण है ये। क्योंकि हमारे अनुभव में ऐसे हमको बहुत लोग बताते हैं कि प्रभु जी हम तो नहीं कर सकते हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ना हम धनवान हैं, हम दान नहीं दे सकते हैं, हमारे पास इतना कष्ट करना पड़ता है, समय नहीं है, जप नहीं कर सकते हैं, ऐसा हर एक चीज़ के लिए बहाना बताते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, कल भी हमने जो सबरी की जो कथा बताई, गरीब होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो गरीब को भी वही दिल भगवान ने दिया जो आपको दिया है, अमीर लोगों को दिया है। गरीब को भी वही हाथ पाँव दिए जो आपको दिए हैं। तो धन से या ऐश्वर्य से या संपत्ति से या और इसी चीज़ से वो कमज़ोर होंगे, लेकिन दिल और दिमाग तो भगवान ने वही दिया है सबको। दो हाथ, दो पाए, दो पाँव, दो आँखें, दो कान, सब इंद्रियां भगवान ने दिया है। तो कहते हैं वो इतने गरीब हो, इतने फटीचर हो, कुछ भी नहीं आपके पास, एक कोई भी पेड़ का पत्ता निकालो वो मुझे अर्पण करो। कितना भी गरीब रहेगा, जानवर रहेगा, अब जानवर नौकरी तो नहीं करता है लेकिन जानवर को पानी मिलता है, भोजन मिलता है, सोने को जगह मिलती है, हाँ परिवार के लिए पत्नी मिल जाती है। तो वैसे जल सबको मिल जाता है, तो कहते आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल लीजिए और मुझे अर्पण कीजिए। और जैसे कल हमने वर्णन किया, यत करोषि, जो भी आप कर रहे हो मुझे, मेरे लिए करो, वो तो कर सकता है आदमी। यज्ञ होषि, जो भी खा रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, मुझे अर्पण करके खाओ। तो कुछ भी नहीं मिला, एक पत्ता, एक फल, एक फूल मिला, तो भी मुझे अर्पण करो, लेकिन भक्ति के साथ करो, क्योंकि भक्ति के साथ में कुछ देने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। शबरी के पास में कोई धन नहीं था जंगल में, लेकिन विशाल भक्ति भरा हुआ हृदय था, इसलिए उसके नियम के बाहर अर्पण किए हुए जो बेर थे ना, नियम का मतलब, नियम ऐसा है कि भगवान को मंत्र बोल के, घंटी बजा के, तुलसी रख के ऑफर करना होता है, ये नियम है। लेकिन प्रेम इतना था कि वो नियम वियम कुछ नहीं, खा के स्वाद लेके उसको दिया गया, और भगवान ने इतने प्रेम से उसको खाया। विदुर की पत्नी ने भी केले का छिलका खिलाया, वे पत्ते की तरह ही है, लेकिन भगवान ने स्वीकार किया उसको। तो हमारे लिए कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमने ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास भगवान ने इतना साधन जरूर दिया है, इनमें से एक पत्र, एक फूल, एक फल, जो हम उनको दे सकते हैं। जो अमीर आदमी है उसको फिर जितनी भी अपनी क्षमता है उसके अनुसार लगाना चाहिए। इसमें समझने वाली एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि ना वो एक पत्र, एक फूल, ना एक फल ये हमारा है, और ना अमीर का जो गड़गंज संपत्ति है वो उसकी है, हमारा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सब कुछ उधार दिया हुआ धन है। तो जिस बुद्धि को अपना कर हमने इतना धन कमाया है, वो बुद्धि भी उन्होंने दिया हुआ है, जो हाथ पांव यूज करके हम लोग मेहनत करते हैं वो भी उन्होंने दिया हुआ है। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं और सुंदरता को मॉडल बनकर बिजनेस करते हैं और केवल सुंदर होने की वजह से करोड़ों को कमाते हैं, तो सुंदरता भी उनका ही दिया हुआ है। जो कुरूप व्यक्ति होता है तो अरे मैं भी सुंदर होता तो मैं भी ऐसे ही पैसे कमाता, लेकिन वो ना कुरूप व्यक्ति के हाथ में है कि उसका सौंदर्य कैसे हो, और ना सुंदर व्यक्ति के हाथ में है वो सुंदरता कैसी हो, वो तो पूर्व कर्मों से मिल जाती है, भगवान की इच्छा से मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अमीरी और गरीबी, अज्ञान या ज्ञान, दुर्बुद्धि या सुबुद्धि, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। भगवान दुर्बुद्धि देते नहीं है, बुद्धि देते हैं, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल, कोई किसी का आईक्यू कम है, किसी ज़्यादा है, वो भी सब भगवान का दिया हुआ है, कुछ हमारा नहीं है। लेकिन तात्पर्य इसका ये है कि हम लोग जो भी गरीबी है या अमीरी है अपनी समझते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं हूँ, और उसके लिए बहाना बनाते हैं, और वो बुद्धि धन जो भी मिला है वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर भगवान कहते हैं अगर आपको परिपूर्णता प्राप्त करनी है जीवन की, तो ये जो मेरे वाला, मेरे से दिया हुआ सब धन संपत्ति आपके पास है, ऐश्वर्य है, विद्या है, बुद्धि है, वो मेरे लिए ही यूज़ करो आप, तो वो परिपूर्ण हो जाता है। जब हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो हम स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमें कर्म बंधन में फंसा देता है। कोई भी काम करते हैं खुद के लिए तो उसका एक फल होता है, और वो फल भोगने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। आप केवल ऐसा नहीं बोलेंगे इसका अच्छा फल आएगा ना तो ही देना, बुरा फल मत देना। हम दारू पियेंगे लेकिन लीवर खराब नहीं होना चाहिए, आनंद आएगा, नशा आएगी, मजा आएगा तो ठीक है, लेकिन लीवर नहीं खराब होना चाहिए, ऐसा हम चुन नहीं सकते हैं। इसलिए बेस्ट क्या है, जो भी है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। अपना समय कितनी बड़ी संपत्ति है बताओ, अमीर के पास कितना संपत्ति है समय का, 24 घंटा। आपके पास समय का संपत्ति कितना है, 24 घंटा। एक व्यक्ति 24 घंटे को इस्तेमाल करके देश को चलाता है, और एक व्यक्ति 24 घंटे के समय अपना घर चलाता है, और एक व्यक्ति कुछ घास काटता है। लेकिन समय का तो ऐश्वर्य जो है वो सबको भगवान ने एक ही दिया है, सबको भगवान ने एक पेट दिया है। अब कितने भी अमीर होंगे तो एक टन खाना नहीं खा सकते, और कितने भी गरीब होंगे तो उतना ही खाना खाएंगे। इसका मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो अमीर गरीब सबके साथ भगवान ने एक ही दिया हुआ है। और सबसे इसमें श्रेष्ठ बात एक है कि जो भावना है जो आपको किसी भी व्यक्ति के प्रति अर्पण कर सकते हैं, वो भावना व्यक्त करने की शक्ति जो है, या भावना जो है, वो सबको भगवान ने सेम दिया है। तो अगर हम समझते हैं कि ये जीवन भगवान का है, उनके लिए है, उनके लिए समर्पित है, तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि जो भी इस दुनिया में है, जो भी मेरे पास भगवान ने दिया हुआ है, समय, बुद्धि, सौंदर्य, ज्ञान, या जो भी इस दुनिया में रखा हुआ है, वो सब मेरे लिए है, तो फिर वो रावण बन जाता है। रावण ने क्या बोला था? इस दुनिया में जो हर सुंदर वस्तु है वो मेरे भोग के लिए है, एवरीथिंग, जो भी दिखता है, जो भी जहां भी दिखाई पड़ेगा वो मेरे लिए है। तो क्या हो गया? सर्वनाश हो गया उसका। हनुमान जी ने अपना सर्वस्व, जो भी कुछ उनके पास था, वो भगवान को अर्पण किया। इसलिए इतना अच्छा उदाहरण है भक्ति का। तो इसलिए चाहे पत्ते हो या फूल हो या फूलों की बहुत सुंदर 50 फूलों की मिली हुई माला हो, वो सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। हम लोगों को ऐसा ट्रेनिंग मिला है कि हम लोग कोई भी फूल आपको हम देंगे आप, तो हम उसको सूंघेंगे नहीं कभी, तुरंत भगवान को अर्पण करेंगे उसको। और भगवान को अर्पण किया हुआ है और अर्पण करके आया, फिर हम सूंघते हैं उसको, माला या कोई प्रसादी। बिना भगवान को अर्पण किए उसको ग्रहण करते ही नहीं है। कहीं भी जाते हैं, कुछ खाते हैं तो पूछते हैं कि ये भोग लगाया ना आपने, कुछ कुछ लोग भूल जाते हैं, बोले सर ये सब्जी रोटी का लगाया है लेकिन ये फल का नहीं लगाया है, वो तो वैसे ही अभी अभी आया था, या ये बिस्कुट का नहीं लगाया है, ऐसा बताते हो। लेकिन हमारे मुंह में जो भी जाता है वो भगवान को अर्पण करके ही जाना चाहिए। सबसे पहले भोगने वाले भगवान होने चाहिए, उसके बाद में हम उनके प्रसाद के रूप में। उसमें चॉइस नहीं है कि मुझे ना जब माला पहनोगे तो पीले फूलों की पहनना, हरे लाल रंग की मत पहनना, आई डोंट लाइक। प्रसाद ही है वो, भगवान के शरीर पर चढ़ी है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। जो भी है, समझो लोग आपको प्रणाम करते हैं तो प्रणाम भी हमको मन में से भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं देखो मैं कितना महान हो गया, अभी लोग मेरे पैर छूते हैं, वो तो कम से कम मेरा अचीवमेंट है ना, मैंने इतना मेहनत किया तो लोग मेरा पैर छूते हैं, कम से कम उसको मेरे पास रखने दो। नहीं, जो भी हमारा हमारे को प्राप्त होता है वो सब भगवान की दया है। अभी ये बल्ब अगर बोलेगा कि मैं इतना पावरफुल हूँ, देखो मेरा इतना प्रकाश है, उधर से बटन बंद कर दो, फिर देखो प्रकाश कहाँ है। सारा प्रकाश तो वो बटन चालू है इसलिए, बिजली की वजह से। तो भक्त जानता है कि मेरे में अगर कुछ भी है तो क्योंकि वो बटन चालू है भगवान की कृपा का, वो बह रहा है, इसलिए वो दिखाई पड़ रहा है। 2000 वाट का है, 1000 वाट का है, इतना प्रकाश दे रहा है, काले पीले नीले रंग का। तो बल्ब को अगर गर्व करना है, स्वार्थवश तो कर सकता है लेकिन वो फंस जाएगा उसके अंदर। लेकिन अगर बल्ब को नम्रता अपनानी है कि नहीं, मेरा सारा प्रकाश जो है वो उस करंट की तरह है, करंट की वजह से है। उसी प्रकार कोई लोग मेरा गौरव कर रहे हैं, मुझे दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, फूलों की माला दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, जो प्रसाद दे रहे हैं लाला की, तो मैं कितना महान हूँ ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सारा भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं जैसे ही आपको कोई माला अर्पण करते हैं, जैसे ही आपको कोई प्रणाम करता है, तुरंत मन में भगवान को उसको अर्पण कर देना कि भगवान दिस इज फॉर यू, कृष्णार्पणमस्तु। क्योंकि हम लोग ना धन दे सकते हैं, भोजन भी दे सकते हैं, लेकिन सम्मान अगर त्यागना है तो बहुत मुश्किल है। वो मैं आपका सम्मान कर रहा है और आप उसको नहीं नहीं मेरा नहीं, वो भगवान का, ऐसा मन में सोच रहा, बहुत मुश्किल है। जितना सूक्ष्म लाभ होता है ना उतना वो छोड़ देना मुश्किल होता है। आप फकीर बाबा बन सकते हो, ना पैसे को छुएंगे, ना कुछ खाएंगे, केवल फलाहार करेंगे, एक घंटा रात को सोएंगे, दिन भर जप करेंगे, लेकिन लोग अगर बोलेंगे आप इनको दंडवत मत करो तो परेशान हो सकते हैं। क्योंकि सम्मान ऐसी एक वस्तु है ना, प्राण, पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ, ये आदमी छोड़ नहीं सकता है, वो अपना समझता है उसको। लेकिन वो भी सब कुछ जो मिलता है, पूजा, लोग हमको गौरव करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वो सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। हमारे परम गुरुदेव कहते हैं, प्रभुपाद जी के गुरुदेव, कि प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा। अगर किसी को गर्व मतलब कोई प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, हाँ, कोई मान सम्मान प्राप्त होता है, वो कहते हैं सुअर के विष्ठा की तरह है वो, सबसे टाकाऊ मतलब सबसे खिलौना, क्योंकि वो इतना भयंकर तरीके से हमको दुनिया में बांध के रखता है। अगर हम इस दुनिया के प्रतिष्ठा से आसक्त हैं तो, क्योंकि इस दुनिया की प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है, जानते ना, लोग एक दिन आपको हार पहनाएंगे, गौरव करेंगे, अगले दिन पत्थर फेंकने को कम नहीं करेंगे। आज आप सत्ता में हो तो लगा गौरव गौरव करेंगे, इलेक्शन हार गए और कुर्सी खाली हो गई तो पूछेंगे भी नहीं आपको कोई। ये दुनिया की प्रतिष्ठा ऐसी होती है। तो इस प्रतिष्ठा को मिलने से या ना मिलने से क्या लाभ है, क्या फर्क पड़ता है? मिलेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं मिलेगा तो भी क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उसमें कुछ दम ही नहीं है, कुछ सब्सटेंस ही नहीं है जिसको हम अपना सके। इस दुनिया में अगर कुछ शक्ति किस चीज़ में है तो वो आध्यात्मिक चीज़ में है। अगर आपको आध्यात्मिक वस्तु प्राप्त होती है, भगवान का नाम प्राप्त होता है, तो उससे हमको आसक्त होना चाहिए। अगर भगवान के भक्तों के भगवान की सेवा मिलती है तो वो उसको खींच के लेना चाहिए। भगवान का प्रसाद मिलता है तो वो ग्रहण करना चाहिए, ये सोच कर नहीं कि मुझे गुलाब जामुन अच्छा लगता है, मुझे चावल अच्छा नहीं लगता, मुझे वो करेले की सब्जी अच्छी लगती नहीं, मुझे महाप्रसाद में से वो दे दो, उस तरह से नहीं। ऐशा का कृष्ण आस्वादिलो, इस भाव से कृष्ण भगवान ने इसको स्वीकार किया है तो मैं भी ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि ये उन्होंने लिया है, इन्होंने ग्रहण किया, उनका प्रसाद है। तो इसलिए हमारे लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अरे आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो विद्यार्थी हैं, वे पढ़ाई है, वे एग्जाम आती है, कैसे जप करेंगे, हम किधर कर सकते हैं? आप बोलेंगे ये करो वो करो, नहीं कर सकते हैं। जहां भी आप हो कर सकते हो। मुझे अभी भी याद है, मैं गर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ। जब मैं MBBS में था तो थर्ड MBBS का फाइनल ईयर का यूनिवर्सिटी का एग्जाम था, तो हम सब लोग भक्त मिलकर 16 माला जप करते थे, एकदम ट्रिकली करते थे। सुबह उठ के 4 करते थे, 4 घंटा पढ़ाई करके 4 करते थे, फिर एग्जाम को जाते समय जो बस जा रही एग्जाम को लेके हमको, तो बस में टाइम पास नहीं करते थे, क्या पढ़ रहा क्या नहीं पढ़ा, तुरंत माला करते थे। और जैसे पेपर दिया तो पेपर देकर कमरे में हमारे हॉस्टल के आने के समय बीच में 4 माला करते थे, आराम से 16 माला होती थी। प्रीलिम के टाइम पे, ओरल्स के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, रिटन एग्जाम के टाइम पे, तो आपको हजार बहाने उस समय। लेकिन अगर आपको विश्वास हो गया है कि करना है, क्या करें, आखिरी दिन 12 घंटा पढ़ेंगे और 4 घंटा सोएंगे तो क्या याद आएगा आपको? लेकिन भगवान के लिए जो आपने वचन दिया है तो निभाते रहो। भगवान भी सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अहो अपोहनम छ। जो आपको एग्जाम में याद दिलाना है वही याद दिलाते हैं, स्मृति। स्मृति जो है ना वो भगवान देते हैं, आप पढ़ते हो लेकिन उसको याद दिलाने का शक्ति भगवान में है, वो भगवान ही देते हैं उसको। इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गरीब से गरीब आदमी को भी न देने के लिए कोई बहाना नहीं है, अमीर से अमीर आदमी के लिए स्वार्थ दृष्टि से भी कुछ बचा के रखना और नहीं देने के लिए भी कोई बहाना नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से जो भी तुम्हारे पास है वो सब आपको यही छोड़ के जाना है। बचा बचा के अल्टीमेटली क्या होगा, किसी को नहीं देंगे, आप मर जाएंगे तो फिर आपके बच्चे उसका भोग करेंगे और आप चिपकली बन जाएंगे उस घर में कि मेरी प्रॉपर्टी है। इसलिए भगवान को देने में कंजूसी मत करना। भगवान को देने से कुछ किसी का नुकसान नहीं होता है, भगवान सबको संभालते हैं। आप कुछ दिए बिना भी आपको वो सब कुछ दे रहे हैं। इतने से थे हम लोग, इतने बड़े हो गए क्या? जब जन्म लिया था माँ के गोद से तो नौकरी कर रहे थे क्या आप लोग 8 घंटे का, और आपकी तनख्वाह से वहाँ आपको खिलाती थी? हमारी बच्ची 14 की हो गई, क्या नौकरी करती हो? लेकिन ठाट से रहती है, भगवान रखते हैं। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, ये सब हमारा है, मैं दूं कि नहीं दूं, सोचूं कि आज कितना दूं, लेकिन ये सब कुछ उनका ही है। ये 50 भी होने के बाद में थोड़ी थोड़ी अनुभूति आती है, ऐसा तुरंत नहीं आती है, लेकिन फिर भी जितनी भी अनुभूति आती है हमको देना चाहिए भगवान को। और जो भी आपके भोग में आता है, आपके लिए आता है, आपके आनंद के लिए आता है, आपके सुख के लिए आता है, वो तो हमको अर्पण करना ही चाहिए। हमारे कल्चर में ऐसा रिवाज है कि समझो आपकी शादी हो रही है और आपके लिए नए नए साड़ी खरीदी जा रही है, शादी के लिए, ये एंगेजमेंट के लिए, ये शाम के लिए, मॉर्निंग के लिए, पूजा के लिए, तो वो सारे और मंगलसूत्र बनाया है, गहने बनाए हैं, कान का रिंग बनाया है, सब कुछ बनाया, वो भी भगवान के सामने रखते थे पहले, वो पहनने के पहले भगवान को अर्पण करते थे उसको कि आपके लिए आनंद के लिए हमारे घर में उत्सव है। अल्टीमेटली पहनेंगे आप ही उसको, लेकिन भाव क्या है कि पहले आपको अर्पण है, सब कुछ मेरा जो है मत करो स्व अर्पण, मेरा जो भी है वो आपके लिए अर्पण है, तब आपका जीवन सफल है। पांडवों का जो ऐश्वर्य था ना, पांडव विश्व के राजा बने, पूरे विश्व के राजा बने, इतना ऐश्वर्य था उनके पास, लेकिन फिर भी जब वो फकीर थे, जंगल में घूम रहे थे वनवास में, तभी भी उनका सब कुछ भगवान के लिए अर्पण था। तो जब राजा बने बोले अरे बाप रे अच्छा हो गया, अभी इतना साल के बाद में ऐसा कुछ मिल रहा है, अभी एंजॉय, अभी क्या भगवान भगवान करना है, बहुत किया भगवान, अभी अभी इसका फल मिला हुआ है, एंजॉय करो उसको। नहीं, वो भी भगवान का ही था उनके लिए। क्या प्रूफ था उसका? जैसे भगवान अंतर्धान हो गए, विश्व को छोड़कर अपने धाम में चले गए, उसी क्षण राज को त्याग करके फकीर बनकर उत्तर दिशा में चले गए। वो ये प्रूफ है उनका कि उनको राज्य में कोई आसक्ति नहीं थी, उनकी सारी आसक्ति गरीबी में अमीरी में भगवान के साथ थी। और जो भी उनके पास था, गरीबी में कंदमूल था, अमीरी में पंच पकवान थे, वो सारा भगवान को अर्पण था उनका। सारा उनके लिए ही था, उनकी सेवा के लिए था, उनके आनंद के लिए था, और खुद उनके सेवक बन के रहे वो। तो भगवान ने दिखाया उनका गौरव। क्या बोलते हैं ना, गरीब गरीब, देखो इतने गरीब थे, नंगे पैर जंगल में घूमते थे, अब कंदमूल खाते थे, तभी भी भगवान को समर्पित थे। जब अमीर बने, धनवान बने, विश्व के मालिक बने, तभी भी भगवान के सेवक थे, तभी भी सब कुछ भगवान में समर्पित था उनका। तो पत्रम फूलम पुष्पम तोयम का ये सारा अर्थ है कि हमारे पास जो भी कुछ है वो उनका है, और वो उनके लिए ही देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, सबके पास सब कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन कोई व्यक्ति सोचता है ये मेरा है, और कोई सोचता है कि ये उनका है। प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं उसको, प्रोप्राइटरशिप जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम है। कोई सोचता है मैं प्रोप्राइटर हूँ इसका, कोई सोचता है भगवान प्रोप्राइटर है। इसमें ही सारा अंतर हो जाता है। आप बोलते हो आप प्रोप्राइटर हो, आप स्वामी हो, आपकी दिशा अलग हो जाती है, और आप बोलते हो कि ये भगवान का है, तुरंत दिशा अलग होती है, एकदम अपोजिट। ऐसा भी नहीं कि भाई बीच में कोई रास्ता है क्या, थोड़ा आपका थोड़ा मेरा ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को वैसे भी अपना बनाकर क्या करना है, अपना बनाकर बाद में सब छोड़ के जाना है ना। इसलिए ज्ञान जरूरी है, संतों के संग में वो ज्ञान प्राप्त होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है उनका दिया हुआ है। और उसके लिए भक्त ऋणी भी रहता है कि चलो दो वक्त रोटी मिल रही है, थैंक यू वेरी मच। पहले वो भी नहीं मिलती थी तो भी थैंक यू वेरी मच, अभी चार मिल रही है तो भी थैंक यू वेरी मच। मुझे अभी भी याद है, हम जब वृंदावन में पहली बार आए थे तो वो थर्ड क्लास अनरिजर्व ट्रेन में ऐसा आए थे, ठंड में ऑटो रिक्शा से और टेम्पो से और बस से करते करते आए थे। वो एक समय था, और आज हमारे लिए गाड़ी आती है, दो चार लोग भी आते हैं हमको उठाने के लिए, सामान लेने के लिए। तभी भी धन्यवाद है, अभी भी धन्यवाद है, क्योंकि सब आपका दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। ऐसे रेलवे के बर्थ से ऊपर से चलकर हम लोग ट्रेन में जाते थे टॉयलेट के लिए, इतना भीड़ में अनरिजर्व में जाते थे, ऐसे पैर ऊपर करके नीचे लोग सोते थे टर्न बाय टर्न। ऐसे हम लोग वृंदावन की यात्रा में आते थे, आप लोग तो पूरा रिजर्व वगैरह सब सुरक्षित रूप से आते हैं, ऐसे पैर दोनों तरफ से, और नीचे एक व्यक्ति सोएगा, एक घंटा सोएगा, फिर उसको उठाएंगे, फिर वो बैठेगा, दूसरा सोएगा, मेरी पत्नी, मैं, डॉक्टर दलाल, उनकी पत्नी, हम सब लोग ऐसे वृंदावन यात्रा में आए हैं। लेकिन उसका कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि तो भक्तों का संग था, वृंदावन धाम जा रहे हैं, और आज हम लोग सब लोग ऐसे ऐट से और ठाट से आते हैं वृंदावन में। लेकिन ये सारा कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान अपने भक्तों को कमी नहीं करते, सब कुछ दे देते हैं। आप उनके सेवा में रहो, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ संभाल लेते हैं। देने में क्या कहते हैं ना, उसमें संकोच मत करो, अरे जब भी वाइफ के साड़ी लेने जाएंगे तो कोई धड़ाधड़ पैसा खर्च करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे। लेकिन जन्माष्टमी का डोनेशन का टाइम आएगा तो सोचेंगे, अरे कितना देना है, इतना क्यों देना है, लास्ट टाइम तो इतना दिया था, अभी थोड़ा सा 100 रुपये बढ़ा दो तो मंदिर से आता है कि अरे इन्फ्लेशन बढ़ गया, अभी इतना टैक्स बढ़ गया, ये बढ़ गया, हाँ ठीक है 200 रुपये बढ़ा दो। लेकिन हमारे लिए जाते हैं मार्केट में कभी तो धनाधन खरीदते हैं जो हर चीज़, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ उनके लिए है। जब सब कुछ उनके लिए होता है तो हमारी खरीदारी भी उस प्रकार से हो जाती है, हमारा खाना पीना भी उस प्रकार का हो जाता है, हमारा पहनना भी उस प्रकार से हो जाता है। जो भी है जब उनके लिए समझ में आता है तो सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। और वैसे पता है सब उनका है तो आसक्ति भी नहीं बचती है। भक्त लोग जाते वक्त बिल लिखते हैं, बहुत सारा सामान मंदिर को लिख देते हैं कि ये मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये बेटी के लिए, बेटा के लिए, और ये सब मंदिर के लिए, गाय के लिए, ऐसा बहुत सारे भगवान के लिए दे देते हैं। वो जानते हैं उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं की सेवा में चला जाए। कृष्णार्पणमस्तु, ये जीवन का परफेक्ट सार है। इसलिए आपकी शक्ति हो, आपकी बुद्धि हो, आपके विचार हो, आपकी सोच हो, आपका धन हो, आपका कपड़ा हो, आपके पैसा हो, गहने हो, हाँ बुद्धि हो, सब भगवान के लिए अर्पण करो। कुछ भी नहीं है आपके पास, बहुत बहाने हैं, तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति इतना सा भी अर्पण कर सकते हैं, भगवान बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े प्रेम से अर्पण करो। जैसे मैंने विदुरानी का केले का पत्ता खा लिया, आपका भी पत्ता खा लूँगा कोई बात नहीं, आप अर्पण तो करो पहले। मेरा समझ के मुझे अर्पण तो करो, कितना खुद के लिए करते रहोगे हमेशा? गरीब भी अपने लिए करेगा, अमीर भी अपने लिए करेगा, सब कुछ मेरा दिया हुआ है, एक बटन बंद कर दूंगा सब अंधेरा हो जाएगा, इधर कुछ देखेगा नहीं आपको। ओके, सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच।